नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्पादकता और निर्यात क्षमता बढ़ाने के लिए भारत की विविध जलवायु परिस्थितियों को पूरा उपयोग करने की आवश्यकता पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि और ग्रामीण परिवर्तन से संबंधित वेबिनार को संबोधित करते हुए देश के कृषि उत्पादों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उच्च मूल्य की फसलों के उत्पादन को बढ़ाने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के केंद्रीय बजट में उच्च मूल्य वाली कृषि पर भी ध्यान दिया गया है। श्री मोदी ने बताया कि वर्तमान में विभिन्न जलाशयों और तालाबों में लगभग 4.5 लाख टन मत्स्य पालन हो रहा है।
एक्सपोर्ट बढ़ाने में एक बहुत बड़ा फैक्टर फिशरीज सेक्टर का पोटेंशियल भी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भी है। आज हमारे अलग अलग तरह के जलाशय, तालाब, ये सब मिलाकर लगभग 4 लाख टन मछली उत्पादन होता है, जबकि इसमें 20 लाख अतिरिक्त उत्पादन की संभावना मौजूद है। हमारे पास रूरल इनकम को डाइवर्सिफाई करने का अवसर है। फिशरीज एक्सपोर्ट ग्रोथ का बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है, दुनिया में इसकी मांग है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज एक दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जाएंगी। इस दौरान वे 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में शामिल होंगी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड के हरिद्वार में प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर वे राज्य सरकार की उपलब्धियों पर आधारित विकास प्रदर्शनी तथा नई न्याय संहिताओं पर केंद्रित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। श्री शाह राज्य के विकास से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। श्री अमित शाह ने कल उड़ीसा में 3,770 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड, उड़ीसा राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ की विकास पहल और राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाएं शामिल है। श्री शाह ने इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड की पारादीप इकाई में सल्फ्यूरिक एसिड के 3रे संयंत्र का भी उद्घाटन किया। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होगा। सत्र के पहले दिन लोकसभा की कार्यवाही में अध्यक्ष ओम बिड़ला को उनके पद से हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा निर्धारित है। पिछले महीने बजट सत्र के पहले चरण के दौरान विपक्ष ने लोकसभा के महासचिव को अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसमें लोकसभा अध्यक्ष पर पक्षपातपूर्ण ढंग से कार्य करने का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की गई थी। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को हवाई अड्डा लाइसेंस प्रदान किया है। हवाई अड्डे को सार्वजनिक उपयोग श्रेणी के अंतर्गत संचालन के लिए लाइसेंस दिया गया है। नागर विमानन मंत्री KN राममोहन नायडू ने उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देते हुए कहा कि ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए विमानन कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसराइल और अमरीका की संयुक्त सेनाओं और ईरान के बीच संघर्ष का आज 8वां दिन है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ किसी भी समझौते से इनकार करते हुए उसके बिना शर्त समर्पण की मांग की है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजस्के ने कहा है कि कुछ देशों ने अमरीका और इसराइल के साथ चल रहे संघर्ष को सुलझाने के लिए मध्यस्थता के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। इस बीच भारत ने केरल के कोच्चि में ईरान के एक जहाज को आपातकालीन डॉकिंग की अनुमति दे दी है और चालक दल के 183 सदस्यों के रहने की व्यवस्था भी की है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि श्रीलंका के दक्षिण में IRIS डेना की घटना से कुछ दिन पहले ईरान ने भारत से अपने जहाज IRIS लावण को शरण देने का अनुरोध किया था, जो अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट समीक्षा के लिए क्षेत्र में मौजूद था। नेपाल में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पालेन्द्र शाह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी हिंसक जेनजी विरोध प्रदर्शनों के बाद हुए पहले आम चुनाव में बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रही है। मतगणना अभी जारी है। इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज भारत के लक्ष्य सेन का सामना कनाडा के विक्टर लाई से होगा। प्रतियोगिता में कल रात लक्ष्य ने क्वार्टर फाइनल में चीन के ली शी फेंग को हराया था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।